आकाशवाणी दिल्ली है। लोकसभा के दूसरे चरण में दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर सहित उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने वीवीपैट के साथ ईवीएम में वोटों की गिनती का शत प्रतिशत सत्यापन करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद महाविद्यालय में आज देहदान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। आईआईटी दिल्ली ने दिव्यांग छात्रों की सुविधा के लिए कक्षाओं में रैंप और लिफ्ट में ब्रेल साइनेज लगाया है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच दिल्ली में मैच जारी है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 8 सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इसके साथ ही राज्य में अगले चरण के चुनाव के लिए अब सभी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। 26 अप्रैल को गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, अलीगढ़ और मथुरा में मतदान होगा। दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा ने आज कांग्रेस की कथित तुष्टिकरण की नीति के विरोध में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को तोड़ने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के षड्यंत्र को दिल्ली की मातृशक्ति कभी सफल नहीं होने देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि समाज में रातों रात परिवर्तन नहीं होता, इसके लिए गहन विचार विमर्श और कानूनी आधार की आवश्यकता होती है। दिल्ली में कांग्रेस के सामाजिक न्याय सम्मेलन में श्री खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के पास लोगों से किए गए वादों को पूरा करने का इतिहास है। मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और खाद्य सुरक्षा का अधिकार जैसी योजनाओं को लागू करना कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके परिवार और करीबियों को मिलने नहीं दे रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और शिक्षा मंत्री आतिशी ने नियमों का पालन करते हुए श्री केजरीवाल से मिलने का आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने केवल सौरभ भारद्वाज को ही मुख्यमंत्री से मिलने दिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आज मतदाता जागरूकता अभियान के तहत छात्राओं ने रैली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। जिला चुनाव कार्यालय के अनुसार सराय ख्वाजा राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने रैली निकाली। इस रैली में विद्यालय के 100 से भी अधिक विद्यार्थियों, जूनियर रेडक्रॉस, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड सदस्यों और अध्यापकों ने भी भाग लिया। जागरूकता रैली मेन मार्केट, सराय ख्वाजा, बजरंग चौक, अशोका इनक्लेव, मुख्य बाजार के अलावा निकटवर्ती कॉलोनियों से होती हुई गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराय ख्वाजा पर सम्पन्न हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने वोटर मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में वोटों की गिनती का शत प्रतिशत सत्यापन करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। एक रिपोर्ट।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में निर्वाचन आयोग से कई प्रश्न पूछे। आयोग ने आश्वासन दिया कि किसी भी स्तर पर ईवीएम से छेड़छाड़ असंभव है। आयोग ने कहा कि अब तक 41,629 मामलों में 4 करोड़ से अधिक वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया गया है। पीठ ने निर्वाचन आयोग पर विश्वास व्यक्त करते हुए कागजी मतपत्रों की वापसी के विचार से असहमति जताई। निर्वाचन आयोग ने कहा कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। वर्तमान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की कोई भी 5 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन किया जाता है। लोकतांत्रिक सुधार संघ सहित याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि देश में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं को अधिक पारदर्शी चुनावी प्रणाली का अधिकार है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद महाविद्यालय में आज देहदान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस और दधीचि देहदान समिति के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यशाला आयोजित की गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह के आह्वान पर आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में दधीचि देहदान समिति के संयुक्त सचिव डॉ विशाल चड्ढा और दिल्ली विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई के कार्यक्रम समन्वयक डॉ नरेंद्र कुमार बिश्नोई मौजूद थे। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर डॉक्टर विशाल चड्ढा ने देहदान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के कार्निया से चार लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है। ब्रेन डेड हुए व्यक्ति के आठ अंग और हृदय गति रुकने के कारण मृत व्यक्ति के तीन अंग का इस्तेमाल किसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। इस कार्य से किसी जरूरतमंद मरीज की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि समाज में देहदान के प्रति झिझक तोड़ने के लिए युवा शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालय के एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर नरेंद्र बिश्नोई ने एनएसएस की महत्ता पर प्रकाश डाला और इसे सामाजिक बदलाव का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। केंद्रीय युवा मंत्रालय में एनएसएस के समन्वयक श्रवण राम ने बताया कि एनएसएस के माध्यम से विद्यार्थियों को राष्ट्रपति सम्मान, गणतंत्र दिवस शिविर और विदेश जाने का मौका मिलता है, जिसके जरिए उनका समग्र विकास होता है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह।
आईआईटी दिल्ली ने दिव्यांग छात्रों के लिए संस्थान में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके तहत कक्षाओं में रैंप और लिफ्ट में ब्रेल साइनेज लगाया गया है। संस्थान की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य प्रशासनिक भवन में दिव्यांग छात्रों के लिए एक पोर्टेबल शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आईआईटी परिसर के पास दिव्यांग छात्रों के परिवहन के लिए एक सुलभ ई कार्ड की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए ऊंची टेबल और व्हील चेयर लगाया गया है ताकि उन्हें प्रयोगशाला में किसी तरह की परेशानी न हो। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक महिला तस्कर को राजधानी के इंद्रपुरी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस महिला के खिलाफ पहले से 12 आपराधिक मामले चल रहे हैं। वहीं दूसरी महिला तस्कर को दिल्ली के शाहदरा इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 70 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने हरियाणा पुलिस के एक इंस्पेक्टर और दो व्यक्तियों सहित तीन आरोपियों को शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर के खिलाफ एक शिकायत पर मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोप है कि इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता को धमकी दी थी और जांच के तहत मामले में उसे आरोपी नहीं बनाने के लिए 40 लाख रुपए की अवैध रिश्वत की मांग की थी। बातचीत के बाद ये आरोपी 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने को तैयार हो गया। आरोपियों के आवासीय और कार्यालय परिसरों में तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। उत्तर रेलवे ने पेयजल की बर्बादी को रोकने के लिए वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों को आधा लीटर की पानी की बोतल देने का निर्णय लिया है। रेलवे ने कहा कि अगर किसी यात्री को और पानी की आवश्यकता होगी तो उन्हें आधा लीटर की एक और बोतल पानी की दी जाएगी। हालांकि इसके लिए रेलवे यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने आज मथुरा में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने दोनों इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों और विषयों पर अधिक ध्यान देने के सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि मथुरा दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी के कार्यक्रम ब्रज क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। प्रधान महानिदेशक ने सुझाव दिया कि दूरगामी प्रभाव के लिए कार्यक्रम बनाते समय स्थानीय परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से सुझाव भी मांगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नियमित तौर पर पंचायत चुनाव कराना 73वें संविधान संशोधन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता पर भी अपने विचार रखे। श्री भारद्वाज ने सभी पंचायतों के बीच संसाधनों के समान बंटवारे को सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक विकास कार्यों के लिए मजबूत और जीवंत पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंचायतें देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने का महत्वपूर्ण माध्यम है और वे देश के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पंचायती राज दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया संदेशों में श्री मोदी ने देशभर में पंचायती राज संस्थाओं के जरिए लोगों की सेवा कर रहे मेहनती व्यक्तियों की सराहना की। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच दिल्ली में मैच खेला जा रहा है। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने पांचवें ओवर में दो विकेट पर 38 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स 8 मैच में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर 8वें स्थान पर है, जबकि गुजरात टाइटंस 8 मैच में 4 जीत के साथ 8 अंक लेकर 6ठे स्थान पर है। कल हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से शाम 7:30 बजे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेहतर कल के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक वीडियो संदेश में कहा कि आपदाओं को अक्सर आर्थिक नुकसान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन इनका व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर वास्तव में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आपदा के बाद पुनर्निर्माण के प्रयासों में मजबूती के पहलू पर भी बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं का प्रभाव सीमाओं से परे होता है और इससे निपटने के लिए देशों के बीच परस्पर सहयोग जरूरी है। 2 दिन का यह सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन को गंभीर विषय बताते हुए इसके प्रभावों से निपटने के लिए वन संरक्षण की भूमिका पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जाति जानबूझकर वनों के महत्व को भूलने की गलती कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मनुष्य पृथ्वी के अमूल्य संसाधनों का मालिक नहीं बल्कि संरक्षक है।
संसाधनों के अनसस्टेनेबल दोहन ने मानवता को ऐसे मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विकास के मानकों का पुनः मूल्यांकन करना होगा। आज ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम पृथ्वी के संसाधनों के ऑनर नहीं है बल्कि ट्रस्टी। हमारी प्राथमिकताएं मानव केंद्रित होने के साथ साथ प्रकृति केंद्रित भी होनी चाहिए।
दिल्ली में कल खराब मौसम के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 उड़ानों का मार्ग परिवर्तन किया गया। इन उड़ानों में 9 को जयपुर, 2 को अमृतसर और 2 लखनऊ और 1-1 मुंबई और चंडीगढ़ के लिए डायवर्ट किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में मौसम में अचानक बदलाव आया और शाम में दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलीं। राजधानी में कल शाम हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज का अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी गौतमानंद जी महाराज को रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का अध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि स्वामी गौतमानंद जी ज्ञान और करुणा की गहनता के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा के दूसरे चरण में दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर सहित उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने वीवीपैट के साथ ईवीएम में वोटों की गिनती का शत प्रतिशत सत्यापन करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद महाविद्यालय में आज देहदान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। आईआईटी दिल्ली के दिव्यांग छात्रों की सुविधा के लिए कक्षाओं में रैंप और लिफ्ट में ब्रेल साइनेज लगाया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।